ब्रांड कॉल्ड यू के नए एपिसोड में आज आपका स्वागत है। मेरे साथ हैं मिस्टर अमित मिश्रा, जो कि बहुत रिनाउंड एंटरप्रेन्योर हैं और नई चीजें कर रहे हैं। अमित, वेलकम टू द शो।
थैंक यू सो मच।
अमित फाउंडर हैं ID8 वेंचर्स का, जो कि कई नई कंपनियों को अंदर इंडिया में लाना चाहते हैं। तो अमित, मुझे ये बताइए कि आपका पहला जो शुरू में जो आपका जो करियर था, उसके बारे में कुछ बात कीजिए।
जी तो मैंने अपनी स्कूलिंग चंडीगढ़ और लुधियाना के बीच में की है,
जी
और पहली बार कह सकते हैं स्टार्टअप का जो एक्सपीरियंस था वो 10th के बाद हुआ था। तो हम दो फ्रेंड्स ने ये डिसाइड किया कि हम लोग पतंगे नहीं उड़ाएंगे, क्रिकेट नहीं खेलेंगे, कुछ अलग करते हैं। तो उसने कुछ पैसे अपने पेरेंट्स से उधार लिए, हमने क्योंकि टेक्सटाइल टाउन में थे लुधियाना में, हमने कुछ कपड़े खरीदे और हमने कहा चलो बेच के देखते हैं, 100 रुपये की चीज़ 120 रुपये में बेचेंगे, हमारा हमने प्रॉफिट कमा लिया। तो
बिल्कुल
सिर्फ प्रॉफिट देख रहे थे, और जब मार्केट में गए तो समझ आया कि हम तो सिर्फ 10 लोगों को जानते हैं। तो एक एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज जो आज मुझे समझ आई, जो मैं उस टाइम कर रहा था, कि हर हर स्कूल हर कॉलेज में ना एक अच्छा ग्रुप होता है, एक बुरा ग्रुप होता है, और आप हमेशा अच्छे ग्रुप में होते हैं। तो हमने क्या किया कि जो अपने अच्छे ग्रुप वाले 5, 7, 10 लोग थे, उनके घरों में जाके अंकल आंटी को मना के हमने अपनी चीजें बेच दी, लेकिन सामान अभी भी पड़ा हुआ है, पैसे लगे हुए हैं, माँ बाप से डांट पड़ रही है। तो फिर मेरे दिमाग में ये आया कि जो जो बच्चे हमारे जो दूसरे ग्रुप के बच्चे हैं हमारी क्लास में बैठते हैं, वो भी तो कपड़े पहनेंगे ही, तो फिर उनसे दोस्ती यारी करनी चालू की। तब समझ आया कि नेटवर्किंग क्या होती है, मतलब आज मैं समझ पाता हूँ कि नेटवर्किंग क्या होती है। और फिर उन लोगों को जाके, उनके घर में जाके, यू नो, सेम चीज की, एंड वी वर एबल टू सेल यू नो मोस्ट ऑफ द थिंग्स विच
That
वी
is
वी बॉट।
quite an amazing example of networking. हाँ, मैंने आज तक कभी नहीं सुना, बट इतने सिंपल आपने डिफाइन करा, बहुत अच्छा।
तो यहीं से वो आज चीजें समझ आ रही है, राइट? उस टाइम तो ये भी नहीं सोचा था कि पेट्रोल भी लगता है, टाइम भी लग रहा है, यू नो, एफर्ट भी जा रहा है, वो सब चीजें नहीं थी। हमें था कि 20 रुपए कमा रहे हर चीज में, हम लोग प्रॉफिटेबल। और फिर उन्नीस
तो एक चीज
साल
बताइए, जब
जी
आपने 100 का माल खरीदा, 120 में बेचा,
जी
तो 20 रुपए प्रॉफिट तो नहीं था, उसमें तो खर्चे भी थे। वो कब समझ में आया कि 20 रुपए में से खर्चे भी निकालने होते हैं?
आई थिंक जब मैंने पहला अपना स्टार्टअप यू नो फॉर्मली किया करीब 10 साल पहले, और जब ये एक्सपेंसेस निकालने शुरू किए, सैलरीज निकालनी शुरू की, तब समझ आया कि अच्छा ये तो वो जो उस टाइम कर रहे थे वो बचपना था, इसलिए बच्चे ही थे।
नहीं, तो एक्सपीरियंस बहुत जरूरी था, राइट?
लेकिन हम दोनों उन फैमिली से थे जहाँ पे सर्विस सर्विस इंडस्ट्री से थे, यू नो, तो हम दोनों की फैमिलीज में भी पता नहीं था, उनको उन लोगों ने सपोर्ट किया, राइट? तो अच्छी बात ये थी कि उस टाइम पे हमारे पेरेंट्स इतने सपोर्टिव थे कि बोल रहे थे कि हाँ जाओ, कुछ नया कोशिश कर रहे हो और अलग करने की कोशिश कर रहे हो। तो आई थिंक वो सपोर्ट आज की डेट में है बच्चों के पास, पहले नहीं था।
तो आगे चलते हैं। आपके जो मैं पढ़ रहा था, आपने लिखा था कि यू आर अ सीरियल टिंकरर एंड एंटरप्रेन्योर,
जी
एंड आई थिंक आपने तो बहुत सारे वेंचर्स किए हैं। तो जब मैं पढ़ रहा था, आपने एक कंपनी शुरू करी, किड्स प्रोनोर,
जी
फिर आपने एक ऑर्गेनाइजेशन करी, शिट हैपन्स, और तीसरा आपने कोई एक स्टार्टअप लीडरशिप प्रोग्राम शुरू किया। तो मुझे तीनों के बारे में एक एक करके बताएंगे।
जी तो किड्स पे और वही मेरे अपने एक्सपीरियंस से था कि अगर बच्चों को शुरुआत में ही आप कुछ चीजें यू नो वो कहते हैं ना कच्ची मिट्टी होते हैं, तो इफ यू कैन गिव देम सम थिंग्स, तो बचपन में कुछ कुछ चीजें हम डाल देते हैं। तो हम लोग 6th स्टैंडर्ड से लेके 12वीं क्लास के बच्चों को हम लोग चीजें सिखाते हैं इन टर्म्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट। हम लोग ये नहीं बोल रहे कि स्टार्टअप सब करो, हम ये कह रहे हैं कि अलग सोचो, दुनिया में इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, आइडेंटिफाई करना शुरू करो, थोड़े कॉन्शियस बनो अराउंड अबाउट योर इन्वायरमेंट, अबाउट थिंग्स विच आर हैपनिंग इन दी कंट्री। इसको हम लोगों ने कोशिश की, यूएन के जो 17 SDGs हैं, यू नो, पॉल्यूशन, चाहे जेंडर इक्वालिटी है, वो सब चीज़ें हम बच्चों को बता रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मुझे आज समझ आती है जब मैं खुद इंटरेक्ट करता हूँ, एम्पथी नहीं है बच्चों में, मतलब वो कि वो लोग रिलेट नहीं कर पाते, उनके पास एक चीज़ जो रिलेट कर पाते हैं फोन, राइट? तो हम लोग चाहते हैं कि वो फोन से आगे बढ़े, चीजें सोचें, और एक्सपीरियंस मेरा मतलब अलग ही रहा है। मैं एंटरप्रेन्योर्स के साथ पिछले 10-11 साल से काम कर रहा हूँ, और वो बच्चों के साथ जो काम करने का अनुभव रहा है ना, वो अलग ही रहा है मेरे को।
इनफैक्ट आज सुबह ही मैं पढ़ रहा था, कहते कि आज जो जो यंग जनरेशन जो है, जिनके सारी जिंदगी फोन के साथ रहती
जी
है, दैट इज अ वेरी लोनली जनरेशन,
बिल्कुल बिल्कुल
बिकॉज दे ओनली हैव द फोन फॉर कंपनी,
बिल्कुल बिल्कुल।
राइट?
तो हम एक बहुत इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज करते हैं, हर 2 हफ्ते में जब हम उनसे मिलते हैं, तो एक सीईओ डिफाइन होता है, और सीईओ का काम होता है 4 लोगों को अपने साथ टीम में बैठाना। और जब वो अगली बार जब वो सीईओ छोड़ता है वो कंपनी, तो जो नया सीईओ आता है उससे पहले वो सीईओ थैंक्स करता है। सो देयर इज अ थैंक यू, सो द एम्पैथी हैपेंस कि अगर ये 4 लोग नहीं होते तो मेरी गाड़ी यहां से नहीं बढ़ती।
बिल्कुल।
तो और फिर जब वो नया सीईओ भी आता है तो उसको वो एक एक सिस्टम होता है कि पुराना सीईओ उसको दे रहा है, राइट, कि भाई अब तुम्हें संभालना है। और हम लोग कोशिश करते हैं कि सब बच्चे या तो पार्ट बने या सीईओ बने, ताकि वो लीडरशिप क्वालिटीज आए, क्योंकि उन्हीं को ड्राइव करना है। तो काफी इंटरेस्टिंग हो, किड्स फिनर तो काफी इंटरेस्टिंग हो गया। और जितने लोगों को हम लोग लेके जाते हैं ना एज स्पीकर या एज वॉलंटियर, उन लोग का भी एक्सपीरियंस बहुत अलग रहा है। तो आज की डेट में हम लोग मई में हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अगले 3-4 महीने में हम लोग एक प्रोग्राम चालू कर रहे हैं, विच इज द किड्स फिनर अवार्ड्स। तो उसमें से जो बच्चे निकलेंगे उनको कैश प्राइजेस मिलेंगे। बट द आइडिया इज कि हम जितने ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए, ये आइडिया पहुंचा पाए, हम नहीं कर पाएंगे वो पता है, लेकिन ये दिस शुड बिकम अ रेवोल्यूशन।
बिल्कुल। एंड यू नो जो आप करेंगे बच्चों के लिए दैट विल बी क्वाइट एन इनक्रेडिबल सर्विस टू देम, उनको समझना शुरू होगा कि स्टार्टअप होता क्या है।
हाँ, तो ये हमारे, मैं हमेशा कहता हूँ कि नेटवर्किंग हो गई और ये चीजें भी हमारी लॉन्ग टर्म फिक्स डिपॉजिट्स है, रिटर्न आएगा। हम लोग इन्वेस्ट करना चालू करें, राइट, आज ये 6th स्टैंडर्ड के बच्चे 10 साल के बाद स्टार्टअप करेंगे, कुछ अलग करेंगे, 5 लोगों को हमारे कारण रोजी रोटी मिलने चालू हो जाएगी, राइट, दैट इज द इन्वेस्टमेंट विच वी आर डूइंग।
वंडरफुल। तो लेट्स मूव ऑन। आपने की जो दूसरा जो अपने वेंचर जो करा, जो मुझे बता रहे थे शिट हैपेंस,
जी,
उसके बारे में थोड़ा समझाइए।
सो शिट हैपेंस पिछले साल शुरू किया था, मैं बॉम्बे में था जब। तो शिट हैपेंस की कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है कि मैं जब लोगों से बात करता हूँ तो वही समझ आता है कि एंटरप्रेन्योरशिप बहुत अकेला, यू नो, लोनली जर्नी होती है। कई चीजें आप अपने पेरेंट्स से, यू नो, अपनी फैमिली मेम्बर से नहीं बता सकते कि चीजें नहीं चल रही है ना कुछ ऊपर नीचे होता रहता है। चैलेंज क्या होता है कि अब वो अंदर आपके तो दबा हुआ है ना, अब वो स्ट्रेस है, वो आपको प्रेशराइज करेगा। और अभी कुछ दिनों पहले वो सीसीडी के चेयरमैन का एग्जाम्पल है, राइट, वो वैसी बहुत सारी चीजें हो
बहुत
रही हैं,
एग्जाम्पल्स
बहुत बहुत
हैं।
सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो रियलाइज ये किया कि एक एक छोटा सा प्लेटफॉर्म बनाते हैं, 20-25 लोग आए, 2-3 ऐसे सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स को जब हम जानते हैं, वो आके अपनी कहानी बताएं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सब लोग ऐसे ऊपर गए
नहीं
हैं,
नहीं कोई भी नहीं
राइट।
होगा ऐसा कोई।
तो बस हम ये चाहते हैं कि कुछ लोग आके ओपनली बता पाए कि हमारे साथ भी चैलेंजेस होते हैं, शिट हैपेंड, और वही हम लोग धीरे धीरे स्टोरीज बना रहे हैं। देन द गुड पार्ट इज कि अब 3-4 बार हम लोग कर चुके हैं, काफी लोग सामने से आके बोलते हैं कि मुझे अपनी स्टोरी शेयर करनी है, क्योंकि अब वो थोड़ा सा मैं ये नहीं कहूंगा ये जो अच्छी चीज़ बुरी चीजें हैं वो सेलिब्रेट हो रही हैं, बट लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं कि होगा ये।
बिल्कुल।
और हम बच्चों को भी यही सिखा रहे हैं कि फेल हो जाओ कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट, लेकिन ऐसी चीजें मत करना, फेलियर इज पार्ट ऑफ द जर्नी, राइट। और पेरेंट्स भी बहुत पुश करते हैं। तो हम लोग इवन फॉर किड्स पे, और हम लोगों ने वो एक सिस्टम चालू किया है, आज के डेट में बच्चों पे बहुत प्रेशर है, राइट, सुसाइड्स
बहुत होते हैं।
बहुत कॉलेजेस में हो रहे हैं, अब तो स्कूल्स में भी चालू हो गए हैं। तो द आइडिया वॉज कि सिंपली हम लोग इसको अगर वही कम्युनिटी बनाते जाएं और अलग अलग जगह पे करते जाएं, हमारे कारण देखा देखी कई लोगों ने अपने अपने शहरों में चालू कर दिए, राइट, अपने अपने खुद कैंपेन्स। तो एटलीस्ट चाहता मैं ये था, तो दिस वॉज नॉट अ लेगेसी बिल्डिंग एक्सरसाइज, दिस वॉज समथिंग विच आई वॉन्टेड टू डू बिकॉज
हाँ
आई हैव
बढ़िया।
गॉन थ्रू इट माई सेल्फ।
बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये वेरी एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है कि अगर मेरे को प्रॉब्लम हो रही है
जी
और अगर मैं किसी से बात कर सकूं विदाउट बीइंग जज्ड,
एकदम,
तो जो मेरी प्रॉब्लम है वो मैं शेयर करके ही अपने सॉल्यूशन निकाल दूंगा। मुझे किसी से बात करने की जरूरत नहीं आंसर ढूंढने के लिए, आंसर सबका हमारे अंदर ही होता है,
बिल्कुल
पर
बिल्कुल
हम
सही
किसी से
बोल रहे
बहुत
हैं
नहीं बात नहीं कर पाते, उसकी वजह से हमारी प्रॉब्लम होती है।
जी।
वेरी गुड, वेरी क्रिएटिव। तो अब लेट अस टॉक अबाउट योर ID8 जो कि आपका वेंचर है,
जी,
मुझे उसके बारे में बताइए।
सो ID8 वेंचर्स मैंने स्टार्ट किया था 2016 में विद, सो इससे पहले मैं F6S करके कंपनी का कंट्री हेड था, और F6S दुनिया की सबसे बड़ी स्टार्टअप डिस्कवरी प्लेटफॉर्म है,
अच्छा।
एंजलिस्ट एंजलिस्ट की तरह है। और मैंने ये इंडिया ग्रोथ, इंडिया एंट्री पूरा ना लिंक्डइन के थ्रू उनको बेचा था, सो देवर नेवर हेयर इन इंडिया। मैंने लिंक्डइन के थ्रू एक मेल डाला, कोल्ड मेल था कि मुझे बात करनी है इंडिया के बारे में, एंड फाउंडर से दो तीन कॉल्स हुई, स्काइप कॉल्स हुई, और मैंने उनको समझाया कि इंडिया इतने बड़े इतनी स्पीड से ग्रो कर रहा है इन टर्म्स ऑफ स्टार्टअप्स, आपको यहाँ होना चाहिए, यू नो देयर हैज टू बी सम लोकल प्रेजेंस। तो उनको बात तो समझ आ गई, उन्होंने कहा कि हम किसी को जानते नहीं है यहाँ पे, तो मैंने कहा मैं हूँ और फिर वो रोल क्रिएट हुआ, मैं कंट्री हेड बना। 2014 से 16 तक मैं उनके साथ काम किया, तो आई वर्क विद ऑल इंक्यूबेटर्स एक्सीलेटर्स, सबको ऑनबोर्ड लाना। तो जब मैंने छोड़ा था 90% ऑफ द पीपल वर देयर ऑन द प्लेटफॉर्म, और उसके बाद रियलाइज यही हुआ कि इंडिया में आना तो काफी लोग चाहते हैं, वो उनको चैनल नहीं पता है। तो 2016 से वो धीरे धीरे बिल्ड करते करते वर्किंग विद इंक्यूबेटर्स एक्सीलेटर्स की किस टाइप के स्टार्टअप आने चाहिए इंडिया में, उनके क्या क्या चैलेंजेस होंगे, उनको बढ़ा रहे हैं। और मेरा जो लास्ट जो मेरा एक्सपीरियंस रहा था एक जापानीज कंपनी के साथ था, एक बहुत बड़ा बिजनेस नेटवर्क है जापान का, पिछले साल उन्होंने आईपीओ किया, उनका भी वही एक्सपीरियंस था कि इंडिया में इतना बड़ा इंग्लिश स्पीकिंग पॉपुलेशन है जिसको लोग टारगेट करना चाहते हैं, बट चैलेंज यही है कि वो लोग अपने, हाँ, और वो लोग अपने यू नो एक्सपीरियंस के साथ आते हैं। अब जापानीज कल्चर और इंडियन कल्चर में फर्क है, कुछ कुछ सिमिलैरिटीज लेकिन काफी फर्क है, जिस तरह से हम प्रोडक्ट्स यूज करते हैं जर्मन और इंडियंस में फर्क है, तो कल्चरली कैसे करते हैं। तो हम लोग तो मैं तो इवन जब आईडी एडवेंचर्स के बारे में बात भी करता हूँ तो मैं बोलता हूँ कि वी आर ट्राइंग टू हेल्प यू अंडरस्टैंड इंडिया द इंडियन वे।
वेरी इंटरेस्टिंग। तो यू नो आप हमें इतने सारे यंग लोगों के साथ काम करते हैं और ये तो मिलेनियल्स की जनरेशन है।
बिल्कुल।
जो मिलेनियल्स जो बिजनेस करना चाहते हैं, हाउ आर दे चेंजिंग द स्टार्टअप इकोसिस्टम?
आई थिंक एक्सपोजर का काफी बड़ा हाथ है, और जो प्राइम मिनिस्टर ने 6-7 साल पहले जो स्टार्टअप नेशन बनाने की बात की थी, उसके कारण पेरेंट्स भी आजकल सपोर्टिव हो गए। हम लोग के टाइम पे इतना सपोर्ट था नहीं, और इतने आई थिंक एक्सपोजर भी नहीं था, इन्फॉर्मेशन।
और मैं आपके इन्फॉर्मेशन में आया, तो आपसे उम्र बहुत ज्यादा हूँ
जी,
हमने तो कभी, हमारे पेरेंट्स तो कभी सोचा भी नहीं था कि कुछ और कर सकते हैं, नौकरी ज्वाइन करो,
चार ऑप्शन
कमाते रहो,
चार ऑप्शन होते थे,
डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर, इंजीनियर या आईएएस, है ना।
लेकिन हाँ, ये काफी चीजें चेंज हुई हैं, और अब तो ऐसे से आप नई नई चीजें, तो सोशल मीडिया मैनेजर 10 साल पहले नहीं थे, राइट, फेसबुक उसके आने के बाद,
बिल्कुल,
आजकल इंटरेस्टिंग नए नए सुनता, तो मीम मैनेजर, मीम क्रिएटर्स, यू नो उनका काम सिर्फ मीम्स क्रिएट करना है, और यू नो वो सब सारे टिकटॉक फेसबुक वगैरह पे शेयर कर रहे हैं, और अच्छा पैसा कमा रहे हैं लोग, राइट, टिकटॉक क्रिएटर्स, टिकटॉक से लोग पैसा कमा रहे हैं,
इन्फ्लुएंसर्स बन गए।
5 साल पहले इन्फ्लुएंसर्स का भी ये दौर चल रहा है, और लोग काफी पैसा कमा रहे हैं, उसके कारण टीवी मूवीज में आ रहे हैं, राइट, तो चीजें तो बहुत चेंज हो गई। आई थिंक टेक्नोलॉजी हैव चेंज द वे वी लुक एट थिंग्स स्पेशली, और मुझे लगता है कि एक एक जो एज ग्रुप, एज गैप जो है ना, मैं कह लूंगा मुझमें, हम लोगों में और उनमें, वो बहुत बड़ा है। आप उनसे कॉन्वर्सेशन करने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि वो सोचते कैसे हैं।
बिल्कुल ठीक। तो मुझे ये बताइए, आपने कहा कि बाहर वाली कंपनी से भी आपने काम करा जहां कंट्री हेड थे
जी,
व्हाट इज अ स्टार्टअप एक्सेलरेटर?
सो स्टार्टअप एक्सेलरेटर इज यू नो बेसिकली एसोसिएशन ऑफ, आई वुड से एसोसिएशन ऑफ पीपल हु वांट टू हेल्प स्टार्टअप्स टू रीच फ्रॉम अ पीओसी लेवल, कि आपने एक प्रोडक्ट बना लिया, टू अ लेवल वेयर दे कैन स्टार्ट मेकिंग मनी और स्टार्ट रेजिंग मनी।
बिल्कुल।
तो स्टार्टअप एक्सेलरेटर इंडिया में बहुत सारे खुल गए। इंटरेस्टिंगली जब मैं F6S के टाइम पे भी बहुत सारे कॉर्पोरेट एक्सेलरेटर्स थे, तो बोइंग का अपना एक्सेलरेटर था, टाइम्स का अपना एक्सेलरेटर है, रिटेल में टारगेट हो गया, एबी पे बहुत सारी बड़ी बड़ी यू नो फॉर्चून 500 कंपनीज है जिन्होंने इंडिया में एक्सेलरेटर खोला, और कहीं नहीं है, मतलब यूएस में होगा, मतलब उनके हेडक्वार्टर्स में, और इंडिया में, क्योंकि उनको भी दिखता है कि इंडिया में ना बहुत बहुत बड़ा टैलेंट पूल है।
बिल्कुल।
और वो लोग स्टार्टअप्स को इंडिया से लेके अपने अपने देश में लेके जा रहे हैं। तो एक्सेलरेटर्स हम लोगों ने भी स्टार्ट किया एक्सेलरेटर, इसको यूपी गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, और आइडिया वही है कि हम लोग Tier 2, Tier 3 मार्केट्स के लिए, जो हम हिंदी में बात कर रहे हैं, अगर हिंदी भाषी हूँ मैं तो ये नहीं कि मैं स्टार्टअप नहीं कर सकता, राइट। तो हम लोग सारे जितने भी इनिबिशन हैं उसके मेंटल ब्लॉक से हम तो दूर करने की कोशिश करें, कि आपको अगर आपको उर्दू में समझ आता है, राइट, आपको तमिल में समझ आता है, हमें तो चाहिए कि उसकी लैंग्वेज में हमको समझाए।
बिल्कुल। और ये तो आप बिल्कुल बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, क्योंकि ये हमारे ही दिमाग में बैठा हुआ है कि हमको अंग्रेजी सीखनी आनी चाहिए।
बिल्कुल।
और मैंने बहुत लोगों से बोला है, जापानी वो जापानीज बोलते हैं, जर्मन है जर्मन बोलते हैं, ठीक है, फ्रेंच है वो फ्रेंच बोलते हैं, वो अंग्रेजी में थोड़ा बिजनेस की बिल्ड होता है, और हमारी तो लार्जेस्ट लैंग्वेज हिंदी है.
बिल्कुल.
तो आई थिंक आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इस पे. तो लेट्स मूव ऑन टू आपका जो एक्सपीरियंस है स्टार्टअप्स एंड एंटरप्रेन्योर्स के लिए, उसके बारे में कुछ पूछते हैं. तो मुझे पहले ये बताइए कि, और ये काफ़ी डिबेट होता रहता है, कि अगर मैं स्टार्टअप शुरू करना चाहता हूँ
जी,
तो मुझे अकेला करना चाहिए कि मेरे को एक कोफाउंडर ढूंढना चाहिए, आपका क्या व्यू है?
मैं अपनी पुरानी बात पे आऊंगा कि वो अकेला थोड़ा सा मुश्किल हो ही जाएगा
जी,
क्योंकि फिर आप चाहे गलत कर रहे हैं चाहे सही कर रहे हैं, आप ही कर रहे हैं. एक कोफाउंडर का फायदा यह हो जाता है कि आपके पास एक यू नो साउंडिंग बोर्ड होता है
जी,
वो आपके साथ सपोर्ट भी करेगा, आपसे लड़ेगा भी, और मेरे को लगता है कि लड़ना भी बहुत जरूरी है. अगर आपको सब यस सर कह रहे हैं राइट, तो कहीं ना कहीं गड़बड़ है. मैं तो अपने जो भी स्टार्टअप को एडवाइस भी करता हूँ, मैं ये तो बोलता हूँ कि आपके पास ऐसे, और फाउंडर्स का काम ये भी होता है ना, कॉम्प्लीमेंटरी स्किल सेट है. मेरा एक स्टार्टअप है
कॉम्प्लीमेंटरी, मतलब जो मुझे आता है वो आपको नहीं आता, जो आपको आता है वो मुझे नहीं
बिल्कुल
आता.
बिल्कुल हाँ. तो अगर मैं इंजीनियर हूँ और मुझे टेक बनाना आता है, और आप MBA हैं, आपको बिजनेस समझ आता है राइट, या आपका बिजनेस एक्सपीरियंस है, तो ये बेस्ट टीम हो जाएगी. ठीक है. और इसमें अगर थोड़ा सा फाइनेंस का मसाला डाल दिया जाए, नो फाइनेंस का
तो विनिंग कॉम्बिनेशन हो गया
एकदम, तो सब कुछ और मैनेजेबल है, क्योंकि आप अकेले क्या क्या करेंगे, वो माइंड स्पेस है, इंसान का दिमाग तो इतना ही चल सकता है ना. तो अगर आप सब कुछ, और ये फिर स्ट्रेसफुल हो जाता है अकेले. मैं तो कह रहा हूँ तीन लोग भी चलाएंगे तो भी स्ट्रेसफुल है, लेकिन कम से कम तीन लोग चलाएंगे तो आप काम बांट सकते हैं.
बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक. तो मेरा अगला क्वेश्चन, अगेन आपके इतना तजुर्बा है और इतने सारे स्टार्टअप्स आपने काम किया है, ये बताइए कि जो स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो कॉमन क्या क्या मिस्टेक्स करते हैं?
आई थिंक जो सबसे पहली मिस्टेक वो ये करते हैं ना कि वो ये सोचते हैं कि उनका आइडिया यूनिक है, तो होमवर्क करके कोई नहीं
जैसा कोई नहीं.
हाँ, तो होमवर्क कोई करता नहीं है. और मैंने ये ना स्मार्टेस्ट ऑफ द लॉट में देखा है कि वो जो बना रहे होते हैं उनको लगता है, क्योंकि वो खुद बना रहे हैं, वो अकेले लगे हुए हैं, तीन की टीम लग गई कि अरे ये तो बहुत सही आइडिया है, दुनिया बदल देगा. और फिर वो मेरे जैसे किसी से मिलते हैं या यू नो फिर रिसर्च करते हैं या किसी इन्वेस्टर को पिच करते हैं, बोलते हैं अरे इसमें तो हमने पैसे लगाए हुए हैं. तो फिर उनको रियलाइज होता है कि अच्छा, ये होमवर्क नाम की वो चीज़ होती है, आप कॉम्पिटिशन एनालिसिस भी करेंगे तो पता चलेगा. कई लोगों को ये भी लगता है कि मैं इंडिया में बना रहा हूँ राइट, तो प्राइस सेंसिटिव होना चाहिए. तो प्राइस, आई थिंक प्राइस इज जस्ट अ नंबर. अगर आप प्राइस कम कर देते हैं तो लोग इसलिए नहीं खरीदेंगे कि बहुत सस्ती चीज़ है, शायद क्वालिटी खराब हो गई.
बिल्कुल.
और आप प्राइस बहुत बढ़ा देते हैं तो लोग बोलेंगे कि यार बहुत महंगी चीज़ है शायद. तो एस्पिरेशन, वो लोग कहते हैं ना मैं आईफोन ही बनाऊंगा या मैं बेसिक फोन बनाऊंगा. अब हर कोई आईफोन नहीं बना सकता. आईफोन को आईफोन एप्पल को 35-40 साल लगे जहां पे वो स्टैंड करते हैं. तो वो दो तीन चीजें हैं. और प्लस एक तो अकेला दौड़ने की जो आदत होती है, किसी की सुनना नहीं है. एक जो बहुत बड़ा माइंडसेट हो गया है ना मेंटर्स का, मुझे लगता है वो तो स्टार्टअप मेंटर्स ज्यादा है, स्टार्टअप्स कम है. और पूरी कहानी में सबसे जो खराब चीज ये है कि कुछ सुनना नहीं चाहता. सब ज्ञानी लोग हैं, तो सामने से अगर आप ये मतलब एडवाइस लेने नहीं कोई आएगा, आपसे पैसे लेने आएगा. उसको पता है कि हाँ आप एक सक्सेसफुल इंसान है, आपके पास पैसे होंगे, तो आपसे बोलेगा कि पैसे दे दीजिए, आपका ज्ञान नहीं चाहिए, आपका एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, आपका नॉलेज चाहिए. लेकिन जब वो 2-3-4 साल का एक्सपीरियंस वाला जो इंसान है, या यू नो कॉलेज से अभी जस्ट निकला है, उसको ये भी समझना जरूरी है कि सब चीजें नहीं आएंगी. दूसरों की मिस्टेक्स सीखो, खुद मिस्टेक्स ना करो. ये तो आई थिंक कॉन्वर्सेशन होती है इंडिया में कि हम लोग खुद गलतियां करते करते हैं. ये सब बोलते जरूर हैं कि दूसरों की मिस्टेक से सीखो, लेकिन ये गलती तो ये तो पक्का ही होती है कि हम लोग फिर यू नो पैसे वेस्ट कर दिए. कई लोग फट और आई थिंक अगर आप किसी भी आज के फाउंडर को पूछेगा कि क्या चाहिए, यू नो टेक्नोलॉजी चाहिए, यू नो सपोर्ट चाहिए, वो बोलेगा नहीं मुझे पैसा चाहिए.
पैसा चाहिए बिल्कुल.
और अगला क्वेश्चन अगर ये पूछ लेगा पैसा क्या करना है, तो वो ब्लैंक हो जाएंगे, मोस्टली ब्लैंक हो जाएंगे, क्योंकि उनको पता नहीं पैसा क्यों चाहिए. क्योंकि सब लोग पैसा मांग रहे हैं तो हमें भी पैसा मांगना चाहिए.
बहुत अच्छा, आई एग्री विद यू. सो अमित, लेट्स मूव ऑन. कुछ क्वेश्चंस आपके लिए पर्सनली
जी,
जो कि मेरी शो का लास्ट सेगमेंट हमेशा होता है. हमने थोड़ा मेंटर्स के बारे में बात करी, तो आप ये बताइए कि आपके वर्किंग करियर में
जी
कोई ऐसे व्यक्ति रहे हैं जिनको आपने मेंटोर माना, या जो ऐसे लोग हैं जिन्होंने आप पर बहुत स्ट्रांग इन्फ्लुएंस यूज वील करा, और अगर हाँ तो आपकी क्या लर्निंग्स थी इन लोगों से?
सो मेरे, मैं कहूँगा पहले इन्फ्लुएंस तो मेरे पिताजी थे,
बिल्कुल,
जो सो ही वॉज अ गवर्नमेंट सर्वेंट, लेकिन उनका जो नेटवर्किंग का स्टाइल था, राइट, आज भी है, मोहल्ले के मतलब ही
सबको जानते हैं,
सबको जानते हैं, सब उनको जानते हैं, हम लोग तो दूर रहते हैं उनसे, लेकिन जब उनको ज़रूरत होती है या किसी को ज़रूरत होती है तो वो आगे खड़े रहते हैं, और मुझे कई चीज़ें वो बताते भी नहीं थे, राइट। तो आज की डेट में वो इतनी चीज़ें कर रहे हैं, लोगों के लिए कर रहे हैं, स्लम्स में जाके यू नो सिस्टम सेटअप कर दिया कि वहाँ पे स्लम्स में दूध की कमी ना हो, तो सिस्टम वो दूध सप्लाई ऑटोमेटिकली होता है। चंडीगढ़ के पास एक स्लम्स है, वहाँ पे जो वहाँ पे जेल है, जेल के जो कैदी चीज़ें बनाते हैं, सो ही हैज स्टार्टेड मैनेजिंग कि उनको उनकी चीज़ें बिके, और ये सब चीज़ें करने के कारण वहाँ के जो जो चंडीगढ़ के जो गवर्नर हैं, उन्होंने उनको वहाँ का कल्चरल सेक्रेटरी बना दिया। तो वहाँ के जो प्लेज होते हैं, और ये सब चीज़ें नहीं पता थी मुझे, मुझे ये पता था कि उनको इंटरेस्ट इन सब चीज़ों का, और ये चीज़ें शांति से वो चुपचाप करते हैं, वो किसी को दिखाते नहीं है। मुझे दूसरे लोगों से पता चलता है कि वो क्या कर रहे हैं। और दूसरा इन्फ्लुएंस, काफ़ी बड़ा इन्फ्लुएंस मेरे दादाजी का था। अच्छा। तो मेरे दादाजी ने 58 में US में जाके पढ़ाई की, शिप पे काम किया ताकि वो US तक पहुँचे अपने पैसे से। यहाँ पे 3 बच्चे थे, यू नो 30-32 साल की उम्र में वो गए थे, और फिर वापस आके देश के लिए काफ़ी काम किया। सुखना लेक चंडीगढ़ का उन्होंने 79-80 में बचाया था।
अच्छा।
एंड दैट एक्सपेरिमेंट इज स्टिल स्टडीड बाय मोस्ट ऑफ द पीपल हु रीड अबाउट सॉइल एंड सॉइल कंजर्वेशन। 88 में जब वो रिटायर हुए, तो उन्होंने एक चक्री विकास प्रणाली करके एक सिस्टम चालू किया, जिसके कारण उनको 2000 में पद्मश्री मिला था।
अच्छा।
तो वो जो मुझे नंबर पता है, वो उन्होंने 15-16 साल में करीब 2-3 करोड़ लोगों को इम्पैक्ट किया था, उनको हेल्प किया था, राइट। तो वो मैं ये कहूँगा मेरा टारगेट 2-3 करोड़ तो शायद नहीं हो पाएंगे, बट एज मैनी पीपल एज आई कैन यू नो हेल्प सपोर्ट, वो है। तो मैं हमेशा जो भी करता हूँ ना, मैं उसमें एक सोशल एंगल जरूर ढूंढता हूँ कि लोगों को कनेक्ट कर पाए, लोगों के लिए कुछ कर पाए, क्योंकि वो जो खुशी है ना, सो आई एक्चुअली कॉल माई सेल्फ सेल्फिश देयर, क्योंकि मैं अपनी खुशी के लिए दूसरों की खुशी, दूसरों में खुशी देखता हूँ, लेकिन लेकिन वो ये दो लोग हैं जो जिनके कारण
इतने स्ट्रॉन्ग पावरफुल रोल मॉडल, रोल मॉडल्स आप ही के परिवार से, तो वेरी क्रेडिट फॉर यू। तो लेट्स मूव ऑन, मुझे ये बताइए कि अगर मैं अमित के बारे में 3 शब्द मांगू आपसे, आप
जी
कि आप किन 3 शब्दों को अपने आप को डिफाइन कर सकते हैं?
सो क्योंकि लोग नेटवर्किंग के कारण जानते, तो आई थिंक मैं कहूँगा रिसोर्सफुल, कंपैशनेट और लाइवली, राइट। तो जिंदगी जिंदगी जीने के वो मकसद में चीज़ें ढूंढता रहता हूँ, कुछ कुछ नई नई चीज़ें करता रहता हूँ, तो हाँ वो एक जो आदत बना ली है ना मैंने पिछले 15-16 साल में, कि किसी चीज़ को मना नहीं करना, और आई थिंक वही मेरा ड्राइविंग फोर्स रहा है कि लेट्स कीप एक्सपेरिमेंटिंग। कुछ कुछ चीज़ें अच्छी हुई हैं, कुछ कुछ बुरी हुई हैं, लेकिन हाँ कभी ये नहीं कहूँगा कि काश ये कर लेता, तो मेरे जिंदगी में वो काश नहीं है, चीज़ें करता रहा हूँ, इंटरेस्टिंग चीज़ें होती रही हैं।
समित, मेरा आखिरी क्वेश्चन जी, और ये है फेलियर पे, कुछ मिनट पहले आपने बात करी थी फेलियर की, और मैं सारे गेस्ट से यही पूछता हूँ, क्योंकि मेरा यह ये व्यू है कि हमारे देश में पर्टिकुलरली और पूरे एशिया में एज पेरेंट्स हम बच्चों को ये नहीं बताते कि अगर फेल हो गई तो कोई फर्क नहीं पड़ता, काम करो, जबकि गीता में भी बोला गया है कि अपना कर्म करो, पर हम लोग क्या हो गया कि सब पेरेंट जो फर्स्ट आओ, लाइन लगी है सबसे आगे जाओ
जी,
और वो हमारे बिहेवियर जो है अपने आप दिखना शुरू हो जाता है, ट्रैफिक लाइट पर मेरी गाड़ी सबसे आगे होनी चाहिए, अगर एयरक्राफ्ट उतरता है हम सबको मालूम है एक ही दरवाजा है, पर अगर इंडियंस बैठे तो सबको सबसे पहले उतरना है, और हमको ये भी मालूम है कि हम फेल करते रहते हैं और उससे सीखते रहते हैं। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आपकी क्या लर्निंग्स हैं आपकी अपनी मिस्टेक से, अपने फेलियर से?
काफ़ी बार फेल हुआ हूँ और काफ़ी चीज़ें समझ आई हैं। एक तो आपको जब आप जब फेल होते हैं ना, जब आप नीचे होते हैं, तो आपको ये समझ आता था कि आपके जो करीब लोग हैं वो कौन है जो जो आपको सपोर्ट करना चाहते हैं, राइट। तो एक जब मुझे वो समझ आया कि शायद जो लोग मेरे करीब नहीं थे या जिनको मैं करीब मानता था वो नहीं थे, तो मैं जितने लोग मुझे लगता है इम्पैक्ट कर सकता हूँ मैं करता हूँ। एक मेरे मित्र हैं जो काफी बुरे टाइम से गुजर रहे थे, राइट, इवन अटेम्प्टेड सुसाइड एट वन पॉइंट टाइम। वो अपन और मैं सालों से बात नहीं की थी, लेकिन मैं शायद उस टाइम था जब उसको जरूरत थी ना, तो आज मुझे अपने बेस्ट फ्रेंड्स के में जाना जाता है। तो मेरे को लगता है कि ये जरूरी नहीं है कि आप लोगों से कनेक्टेड रहें, जरूरी नहीं है कि रोज बात कर रहे हो, लेकिन जरूरी ये है कि आप जब जब उनको जरूरत हो ना तब आप उनके साथ खड़े हों। एक वो जो रिलीफ होता है कि हाँ आई एम नॉट अलोन, आई थिंक वो आपको फेल नहीं होने देगा, वो आपको नीचे नहीं गिरने देगा, आपको पता है कि मेरा हाथ पकड़ने के लिए कोई ना कोई खड़ा है।
वेरी गुड। और आपने अभी जो बोला ना कि ही ट्रीटेड लाइक यू लाइक अ फ्रेंड, ये मैंने कई लोगों से कई बार सवाल पूछा है और मैं सारे गेस्ट से भी पूछता हूँ फिर से सवाल, कि अगर हम सोचें मेरे पांच कौन से फ्रेंड हैं जिन पर मैं ब्लाइंडली डिपेंड कर सकता हूँ,
जी
तो वो पांच ढूंढने बहुत मुश्किल होते हैं। और मैं
बिल्कुल
सबसे ये पूछ रहा हूं कि आप भी सोचिए कि आपके पांच कौन से ऐसे मित्र हैं
जी
जो कि पहले आप सोचते हो और उसको भी यही सोचना चाहिए कि आप उसके मित्र हैं।
बिल्कुल
तो ये बहुत मुश्किल है।
जी, थैंक
बट अमित, इसके साथ थैंक यू वेरी मच,
यू सो मच
इट इज
मतलब
बीन
सर,
प्लेजर टॉकिंग टू यू,
सेम
एंड
हियर
ये पहली मेरी पूरी शो हिंदी में है। आई एम ग्रेटफुल टू यू
जी, थैंक
एंड विश यू ऑल द बेस्ट।
यू सो मच।
Thank you for listening to the Brand Called You podcast. Be sure to visit tbcy.in to join the conversation, access show notes, and discover fantastic bonus content. You can follow us on YouTube, Twitter, Facebook, and Instagram. Simply search for the Brand Called You. Thank you, and see you next week.